الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين یہ سور بقرہ کی 23 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک ہے تو ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مدد کرنے والوں کو بھی بلا لو. یہ قرآن کی سچائی کا عجیب و غریب بیان ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس زمانے کے اندر جیسے حالات ہوتے ہیں، اس حالات کے لحاظ سے اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتے ہیں. जब हजरत ईसा अलैहि सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो जमाना मेडिकल साइंस का जमाना था। अजीब अजीब दवाएं दुनिया में लोगों के सामने आ रही थी। और बड़े बड़े हकीम लोग उस जमाने में होते थे। लेकिन वो बड़े बड़े डॉक्टर हकीम लोग तीन बीमारी की दवा जानते नहीं थे। बहुत मेहनत की लेकिन तीन बीमारी की दवा उनसे नहीं बन सकी। एक बीमारी तो ये कि कोई बच्चा अपनी मां के पेट में से कोढ़ वाला पैदा हुआ, सफेद दाग वाला, तो बच्चे को दवा करना उनकी ताकत से बाहर की बात थी। कोई दवाई नहीं थी कि कोढ़ वाले बच्चे के कोढ़ को दूर कर सके, जो मां के पेट से कोढ़ वाला आया हो। दूसरी बीमारी थी जो बच्चा मां के पेट से अंधा निकले, उस अंधे बच्चे को अच्छा करना उनके बस में नहीं था। और तीसरी बीमारी मौत की बीमारी कि कोई मरने वाले को दवा पिला के बचा नहीं सकते थे। ये तीन बीमारी की दवा डॉक्टरों के पास नहीं थी। जालीनूस, जिनका नाम हिकमत में यूनानी मेडिकल में मशहूर है, वो भी ईसा अलैहि सलाम के जमाने के हैं। अब अल्लाह की शान देखो, ईसा अलैहि सलाम को जो मौजिजा और चमत्कार मिला वो क्या मिला कि जो डॉक्टर और वैद लोग हकीम लोग नहीं कर सके अल्लाह के नबी करते थे। बच्चों को लाते थे, औरतें लेके आती थी, मर्द लेके आते थे, हजरत ये मेरा बच्चा मां के पेट से कोढ़ वाला निकला है। हजरत ईसा अलैहि सलाम उसके ऊपर हाथ फिराते थे, सिर्फ हाथ, कोई दवा ववा नहीं, और यूं कहते थे अल्लाह के हुक्म से अच्छा हो जाए। वो कोढ़ अच्छा हो जाता था हाथ फिराते ही। छोटे छोटे अंधे बच्चों को लेके माएं आती थी, हजरत ये बच्चा मां के पेट में से अंधा निकला है। हजरत ईसा अलैहि सलाम उसकी आंख पर अपनी मुबारक उंगली फिराते थे बस, और कहते थे कि अल्लाह की मर्जी से तो देखता हो जा। आंख खुल जाती थी उसकी। फिर कभी कभी कब्रिस्तान जाते और मुर्दों को कहते चल जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा होके खड़े हो जाते थे। हजरत नूह अलैहि सलाम के बेटे जिनका नाम साम था, वो तो ईसा अलैहि सलाम से हजारों बरस पहले इंतकाल कर गए। उनकी कब्र पे गए और कहा ईसा अलैहि सलाम ने कुम बी इज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म है खड़ा हो जा। तो नूह अलैहि सलाम के बेटे साम कब्र में से जिंदा होके बाहर निकल आए। उनके आधे बाल सफेद थे। नूह अलैहि सलाम ने पूछा क्यों भाई आधे बाल तुम्हारे सफेद? कहा हजरत मुझे ऐसा, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पूछा तुम्हारे आधे बाल सफेद कैसे? कहा हजरत मुझे ऐसा लगा जब आपने उठाया कब्र में से कि कयामत आ गई, और कयामत के डर से ये मेरे बाल सफेद हो गए, इसी डर से। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि भाई अभी कयामत नहीं आई, लेकिन मैंने अपना चमत्कार दिखाने के लिए तुझे जिंदा किया है, फिर मर जा। सबने मेरा चमत्कार देख लिया। कहा हजरत मरने तो तैयार हूं, लेकिन मौत का झटका बहुत कड़वा होता है, उससे बहुत डर लगता है। तो कहा ठीक है, मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं अल्लाह से कि तुझे मौत का झटका नहीं लगे और ऐसे ही तेरी रूह निकल जावे। कहा ठीक है, तो मैं मरने तैयार हूं दूसरी मर्तबा। अब आप सोचो कि बड़े बड़े जमाने के डॉक्टर जो नहीं कर सकते, वो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम के मुबारक हाथ में उसकी शिफा रखी थी, अच्छा कर देते थे। अभी ताजा किस्सा है, 10-11 महीने पहले एक लखनऊ का आदमी है, हमारे यहां टेलरिंग काम करते हैं, वो मेरे पास आए कि मेरी 3 महीने की छोटी बच्ची है, पैदाइश से उसकी आंख में कोई कमजोरी है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बतलाया, सूरत, नवसारी, बंबई, अहमदाबाद, सब कहते हैं कि ये बच्ची कभी अच्छी नहीं होगी, उसकी आंख हमेशा, ये लड़की अंधी रहेगी, उसकी रग नस कुछ कमजोर है। कहा अब मैं क्या करूं। मैंने कुदरती दिल में बात आई, मैंने कहा भाई अब एक काम कर लो, सारे डॉक्टरों के पास घूम घूम के आए तो अब अल्लाह वालों के पास भी एक चक्कर लगा दो। जितने उम्मत के अंदर अल्लाह के नेक बंदे हैं, जाओ सबके पास, बच्ची के लिए दुआ करवाओ। मैं शुरुआत करता हूं दुआ करने की, बाकी और जगह जाओ। मैं तो बात कह के भूल गया, अभी अभी 6 महीने के बाद अगली जुमा को ईशा के बाद वो मस्जिद में मुझे मिलने आए। कहा अल्लाह की अजीब कुदरत आपको सुनाऊं। कहा मैं तो अपनी बच्ची के लिए नाउम्मीद हो गया था कि पूरी जिंदगी अंधी रहेगी। कहा आपने कहा तो मैंने सफर चालू किया। कहा देवबंद गया, सहारनपुर गया, रायपुर गया, इलाहाबाद गया, लखनऊ गया, सब जगह जहां जहां अल्लाह के नेक बंदों के बारे में खबर मिली सब जगह जाके दुआ करवाई। कहा 6 महीने में घूमता रहा, दुआएं करवाई, अल्लाह की कुदरत, मेरी बच्ची की आंखें अच्छी हो गई, देखती हो गई। फिर आने के बाद कहा मैं फिर सब डॉक्टरों के पास गया जिन्होंने ना कहा था, तो कहा सब डॉक्टरों ने कान पकड़े और यूं कहा कि ये कोई चमत्कार हुआ है। बाकी मेडिकल साइंस के एतबार से तुम्हारी बच्ची की आंख अच्छी हो ही नहीं सकती थी, ये कोई चमत्कार हुआ है। मैंने कहा अल्लाह हमें ये यकीन अता फरमाए कि दुनिया की ये जाहिरी तदबीर और जराए से आगे बढ़कर अल्लाह की भी कोई ताकत है, उसकी भी कोई कुदरत है। जब हमें उस खजाने पे यकीन हो जाएगा, उसकी कुदरत पर, उसकी ताकत के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह हमारी परेशानियों को आसान फरमा देंगे। तो हर नबी के साथ ऐसा ही हुआ कि नबी के जमाने में जिस चीज का माहौल होवे, अल्लाह ऐसा चमत्कार नबी को देवे। अब जब हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, कैसा जमाना था कि मक्का, अरबस्तान, ये अरबी जुबान, अरबी भाषा, लैंग्वेज अरबिक, बहुत टॉप क्वालिटी की, हाई लेवल की, एकदम ग्रामर वाली, व्याकरण वाली, सर्फ न हुआ वाली, बलागत वाली, टॉप क्वालिटी की अरबी बोली जाती थी। इतनी अच्छी अरबी, इतनी अच्छी अरबी कि लोग अरबी में नजम लिखते थे, काबा पे लटकाते थे हरीफाई में कि देखो मैंने इतनी अच्छी नजम लिखी, कविता लिखी। दूसरा आदमी नई कविता लिखता, उसके बाजू में लगा देता कि देख तुझसे अच्छी मैंने लिखी। इसको कहते हैं अरबी टॉप लैंग्वेज, भाषा। उसमें हरीफाई होती थी, छोटे छोटे बच्चे भी टॉप क्वालिटी की अरबी बोलते थे और इतनी हाई लेवल की ऊंची अरबी थी कि अरब लोग सारी दुनिया को गुंगा कहते थे। सारी दुनिया में किसी को बोलना ही नहीं आता, बोलना हमको ही आता है। देखो एक लफ्ज है अरबी, यानी अरबी बोलने वाले, उसके सामने एक लफ्ज बोलते अजमी। अजमी के माने पूरी दुनिया के लोग जिनको अरबी नहीं आती उनको गुंगा कहते थे कि ये सब गुंगे लोग हैं। इतनी टॉप लेवल की अरबी बोली जाती थी, बड़े बड़े टीचर होते थे, उस्ताद होते थे जो अरबी सिखाते थे, ग्रामर सिखाते, भाषा सिखाते, व्याकरण सिखाते, सर्फ ना हुआ बलागत सिखाते, टॉप क्वालिटी की अरबी सीखी सिखाई जाती थी। अब ऐसे माहौल के अंदर हुजूर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये कि आप तो उम्मी थे, किसी उस्ताद के पास पढ़ने नहीं गए थे। अल्लाह के जितने भी नबी होते हैं वो दुनिया में किसी उस्ताद से, किसी टीचर से सीखते नहीं हैं। अल्लाह अपने नबियों को डायरेक्ट सिखलाते हैं, ये नबी की शान होती है। नबी का कोई टीचर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई शिक्षक नहीं, अल्लाह डायरेक्ट नबी को सिखलाते। अल्लाह ने खुद फरमाया मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान। ए नबी आप कुछ नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे। वलाकिन जालनाहु नूरा नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। लेकिन हमने आपको इल्म की, पैगंबरी की एक रोशनी अता फरमा दी। अब सारी दुनिया उस रोशनी से रास्ता चल रही है। आप तो अनपढ़ थे, किसी से पढ़ा नहीं आपने, और कौन पढ़ावे आपको? बाप होवे तो बच्चे को पढ़ने भी भेजे, बाप होवे तो बच्चे को स्कूल मदरसा भी भेजे, ट्यूशन भी करवावे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसी दिन से यतीम थे। अब्बा का साया तो पहले ही उठ गया, अभी तो मां के पेट में थे, अब्बा का इंतकाल हो गया। अब यतीम बच्चे को कौन पढ़ावे, कौन उसको स्कूल मदरसा उस्ताद के पास भेजे? किसी से आपने पढ़ा नहीं। और उस जमाने में मक्का में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई हाई स्कूल, कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई चीज मक्का में नहीं थी। सारे मक्का वाले भी ऐसे ही थे। अब ऐसे माहौल में आकर के हुजूर ने कुरान सुनाना चालू किया अल्लाह की तरफ से। इतना बेहतरीन कुरान सुनाया और सुना के चैलेंज दिया पूरे अरब के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, कयामत तक आने वाले इंसानों को चैलेंज दिया, इंसानों को भी चैलेंज दिया, जिन्नातों को भी चैलेंज दिया। और जिन मूर्तियों की, बुतों की वो पूजा करते थे उनको भी चैलेंज दिया। हुजूर ने क्या फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे कि ये मेरा कुरान अल्लाह की बात है, अल्लाह का कुरान है, अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह का नहीं है तो इस कुरान जैसा बना के तुम बतलाओ। मैं तो उम्मी हूं, अनपढ़ हूं, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुमको बहुत अच्छी अरबी आती है, चलो जरा बना के बतलाओ। और कुरान में 114 सूरतें हैं, सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर का, इन्ना आतैना जैसी छोटी सूरत तो बनाओ, बड़ी नहीं बना सको तो। खुला चैलेंज दिया अल्लाह ने कुरान के अंदर कि कुरान के जैसे मुबारक अल्फाज है, जैसी प्यारी प्यारी कुरान की बात है, जैसा कुरान का मायना है, ऐसी कोई बात बना के लाओ। हुजूर के जमाने के अरब लोग नहीं बना सके, आज तक दुनिया का कोई बड़े से बड़ा होशियार आदमी नहीं बना सका, और इंशाल्लाह कयामत तक नहीं बना सकता। और देखो अजीब बात बतलाऊं आपको, जितने नबी आए उन नबी के पास जो चमत्कार होते थे, नबी का इंतकाल हुआ चमत्कार भी खत्म हो गया, नबी जिंदा चमत्कार जिंदा, नबी का इंतकाल चमत्कार का भी इंतकाल। कहते ना मूसा अलैहि सलाम के हाथ में लकड़ी थी वो सांप बन जाती थी, मूसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, लकड़ी ने सांप बनना भी बंद कर दिया। लेकिन हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दो चमत्कार ऐसे हैं कि कयामत तक दुनिया उसको देखती रहेगी। एक चमत्कार कुरान है, ऐसा कुरान आज 1500 बरस हो गए, पूरा कुरान तो क्या एक आयत भी कोई नहीं बना सका, ये खुल्लम खुल्ला चमत्कार है। और दूसरा चमत्कार का, हाजी लोग जब शैतान को 3 दिन कंकरी मारते हैं, 3 दिन 4 दिन हज में, तो क्या वो कंकरी कहां चली जाती है आज तक किसी को पता नहीं। अब समझो 30 लाख हाजी है और एक हाजी कम से कम 49 कंकरी मारता है, कम से कम, पहले दिन 7, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन 21, 49 कंकरी हर हाजी मारता है। अब 30 लाख का गुणाकार करो 49 से, कितने करोड़ हो जाती है। तो हर साल कंकरी का एक हिमालय वहां बनना चाहिए, हर साल कंकरी का एक हिमालय पहाड़ बने वहां, तो 1500 बरस की हज में तो कितने सारे पहाड़ बन जाए। लेकिन वो कंकरी जिसका हज अल्लाह के दरबार में कबूल होता है, अल्लाह उसकी कंकरी को आसमान के ऊपर उठा लेते हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला वो कंकरी कब गायब होती है, कैसे गायब होती है, कहां जाती है। ये हुजूर का खुल्लम खुल्ला मौजिजा है, चमत्कार है, जो कयामत तक बाकी रहेगा। तो ये कुरान अल्लाह की बात है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का उतारा हुआ है। ये कुरान खुद चैलेंज करके कह रहा है। देखो कुरान में गैब की बातें हैं, मरने के बाद क्या होगा, ये गैब की बात कहीं नहीं मिलेगी जितने कुरान में मिलेगी आपको। कुरान ने भविष्यवाणी की, पेशिनगोई, भविष्य में फ्यूचर में क्या क्या होगा कुरान ने बतलाया। हत्ता इजा फुतिहत याजूज व माजूज, कुरान ने कहा याजूज माजूज आएंगे दुनिया में, आएंगे। कुरान ने कहा दज्जाल आएगा, आएगा दज्जाल। ये तो वो भविष्यवाणी है जो बहुत लंबे जमाने के बाद, बहुत सी भविष्यवाणी तो पहले हो चुकी। 1400 सहाबा बैत कर रहे हैं हुजूर के हाथ पर, फिर मक्का के काफिरों के साथ सुलह हुई, दब के सुलह हुई, सब सहाबा बहुत नाराज, हुजूर हम हक पे हैं, फिर भी दब के सुलह करने की मक्का वालों से। ऐसी ऐसी सुलह करवाई मक्का वालों ने कि सहाबा को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी। अच्छा तुम दब गए हो, दब के सुलह कर रहे हो, दब के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ये तो तुम्हारी खुल्लम खुल्ली जीत है, तुम जीत गए, दबे नहीं हो। अब समझ में नहीं आता कि ये तो दब के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, और जीत कैसे गए। ये भविष्यवाणी की कुरान ने, भविष्य की बात बतलाई। दो बरस में पता चल गया कैसे जीते थे। ऐसे जीत गए कि पूरे मक्का वाले जो दबाने आए थे उनको मक्का छोड़ के भाग जाना पड़ा, और मक्का में हुजूर की जीत हो गई सिर्फ दो बरस के अंदर। कुरान की भविष्यवाणी एकदम सच्ची साबित हो गई। एक मौके पर कुरान ने कहा, अल्लदीन इम्मकन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सला व आतुज़्ज़का व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते, ये आयत ऐसे जमाने में अल्लाह ने भेजी कि जब ये मेरे नबी के सहाबा के हाथ में हुकूमत आएगी तो ये अपने देश में, अपने मुल्क में इतनी अच्छी हुकूमत चलाएंगे कि हर एक नमाज पढ़ रहा है, हर एक जकात दे रहा है, हर एक अच्छे काम सीखता सिखाता है, गुनाह से रोकता है, ऐसा माहौल हो जाएगा। अब जब अल्लाह ने आयत उतारी, मुसलमानों की कोई हुकूमत थी नहीं, एक मदीना में मुसलमान रहते थे, वो भी पूरा अपना नहीं, थोड़े यहूदी, थोड़े मुनाफिक, थोड़े काफिर, थोड़े मुसलमान, सब मिक्स, एक भी हुकूमत नहीं मुसलमान की। लेकिन ये कुरान की आयत उतरी, थोड़े दिनों में दुनिया ने देख लिया। कितने दिनों में? 30 बरस के जमाने के अंदर कि पूरी दुनिया के ज्यादा हिस्से के ऊपर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना, हजरत उमर फारूक का जमाना, हजरत उस्मान गनी का जमाना, अली मुर्तुजा का जमाना, हजरत हसन हुसैन का मुबारक जमाना, दुनिया के कोने कोने के अंदर जहां देखो इस्लामी हुकूमत, जहां देखो इस्लामी हुकूमत। कुरान की बात बिल्कुल सच्ची हो गई। तो कुरान भविष्य की जो बात करता है वो बात भी एकदम 100% बिल्कुल सही और सच्ची। कुरान में अल्लाह ताला ने इतिहास की बातें भी बयान फरमाई, और कुरान में जो इतिहास है, हिस्ट्री है, तारीख है, वो इतनी सच्ची हिस्ट्री और इतिहास दुनिया की कोई बुक में नहीं है। अब बताओ कि आदम अलैह सलाम जब दुनिया में नहीं आए थे तब क्या हुआ था? दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये कुरान में मिलेगा। अभी चंद आयतों के बाद जो है आदम अलैह सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है, कैसे दुनिया में आए, पहले कहां थे, पूरी हिस्ट्री उनकी इंशाल्लाह कुरान में आ रही है। फिर नूह अलैह सलाम का जमाना आया, क्या हुआ, कैसे तूफान आया, दुनिया की किसी बुक में मिलेगा तो भी आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा। एकदम सच्ची हिस्ट्री चाहिए, सच्चा इतिहास चाहिए, कुरान में मिलेगा। ये कुरान की चीजें हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया कि अगर इस कुरान को तुम नहीं मानते तो इस कुरान जैसी एक सूरत बना के बतलाओ। आज तक बना नहीं सके तो फिर ईमान ले आओ कि ये सच्ची किताब है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फइल्लम तफालू वलन तफालू फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहन्नास वल्हिजारा उइद्दत लिल्काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम ये काम नहीं कर सको, यानी कुरान जैसी आयत बनाने का काम, और तुम कभी नहीं बना सकोगे, तो फिर जहन्नम की आग से डरो जिसमें इंसान और पत्थर को ईंधन बना के अल्लाह डालेंगे, और अल्लाह ने वो काफिरों के लिए तैयार की है। कि जब ये कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है तो तुमको उस कुरान के ऊपर ईमान ले आना चाहिए, कुरान को सच्ची बात मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो फिर आखिरत के अंदर खतरनाक जहन्नम की आग है। देखो दुनिया में जो आग जलती है ना, लकड़े के जरिए जलती है, कागज और घास के जरिए जलती है, गैस के जरिए जलती है, केरोसिन पेट्रोल के जरिए से जलती है, डीजल ऑयल से आग जलती है। ये दुनिया में आग जलाने की चीजें हैं, लेकिन यकीन रखो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जहन्नम की जो आग जलेगी वो इंसान और पत्थरों के जरिए से जलेगी। उसमें लकड़ी क्या होगी, इंसान लकड़ी बनेंगे, जलेंगे इंसान, और उससे वो भड़केगी। पत्थर, दुनिया की आग पत्थर को नहीं जला सकती, लेकिन ये पत्थर जहन्नम की आग में जल जाएंगे और उससे आग भड़केगी। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी आग से डरो और मेरी नाफरमानी और कुफ्र का काम मत करो। कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐसी मिठास रखी है, ऐसी रौनक रखी है कि बड़े से बड़े दुश्मन भी सुनते हैं कुरान को, दुश्मन भी सुनने मजबूर हो जाते हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए नए नबूवत का ऐलान किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, और लोगों को पढ़ पढ़ के कुरान सुनाते थे, तो मक्का के सब खानदान वाले, फैमिली वाले दुश्मन बन गए, विरोधी हो गए। इतने में हज की सीजन आई, हज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चल रहा है, उससे भी पहले से, और हज की सीजन में सारी दुनिया से लोग मक्का आते थे। तो अब मक्का वालों को डर ये हुआ कि अलग अलग जगह से लोग हज पढ़ने आएंगे और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मिल मिल के कुरान सुनाएंगे, सबको ईमान की दावत देंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे, दूर दूर तक ईमान फैल जाएगा। तो कहा लोगों को रोकना कैसे इनकी बात सुनने से, कैसे रोकने का लोगों को कि इनकी बात मत सुनो? तो कहा चलो सब बैठ के मिल के मशवरा करें कैसे रोकने का। तो पूरे अरब के मक्का के बड़े बड़े सरदार लोग जमा हुए मशवरा करने। एक बहुत चालाक आदमी था मक्का में, सबसे बड़ी उम्र का, वलीद इब्ने मुगैरा, उनको मशवरे का अमीर बनाया। का परेशानी की बात यह है कि हज आ रही है और ये मोहम्मद तो सबको कुरान सुनाएंगे जाकर के, सब उनके हाथ पे ईमान लाएंगे, तो लोगों को रोकना है कैसे रोके। तो वलीद बिन मुगैरा बहुत होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा तुम लोग राय पहले दो कैसे अपने रोके। तो एक सरदार ने राय दी कि जितने लोग मक्का आवे सबको यूं कहने का कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह पागल आदमी है, उनके पास मत जाना, सबको कहने का कि ये पागल है। तो वलीद बिन मुगैरा कहने लगे अमीर साहब मशवरे के कि भाई पागल तो इसीलिए नहीं कह सकते कि कोई भी इनके पास अगर चला भी गया और इनकी बात सुनेगा तो वो कहेगा कि तुम झूठे हो, ये पागल थोड़ा ही है, ये तो बहुत अच्छी बात करते हैं, इसलिए पागल वाली बात तो चलेगी नहीं, चलो और राय दो। तो दूसरे ने राय दी कि अपने सबको कहने का कि ये आदमी काहिन है, यानी ज्योतिष है। जैसे ज्योतिष लोग गैप की बातें करते हैं, क्या ये भी सब गैप की बातें करते हैं। तो वलीद इब्ने मुगैरा अमीर साहब ने कहा कि नहीं, ज्योतिष वाली बात भी नहीं चलेगी, इसलिए कि ज्योतिषों की बात कुछ अलग होती है, वो आधी सच्ची आधी झूठी, एक सच दस मिलावट, और इनकी तो सब परफेक्ट बातें हैं, कोई नहीं मानेगा कि आदमी ज्योतिष है। एक तीसरी राय आई मशवरे में कि अच्छा इनको शायर कहो, कि कोई भी आवे कहने का ये शायर आदमी है और वो कुरान शायरी है, ऐसा कहने का। तो वलीद बिन मुगैरा कहने लगा कि नहीं, शायरी भी कहना गलत है, इसलिए कि शायरी सारे अरब लोग जानते हैं और कुरान अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, वो तुमको झूठा कहेंगे, शायरी वाली बात भी नहीं चलेगी। तो अब सब मशवरे वालों ने वलीद बिन मुगैरा से कहा कि वलीद अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो वलीद ने बहुत सोचा, उसके बाद जवाब दिया कि मेरी समझ में एक बात आती है। का क्या बात? का देखो इनकी वजह से क्या हुआ कि घर घर के अंदर फूट पड़ गई, बाप मुसलमान बेटा काफिर दोनों अलग हो गए, औरत मुसलमान हो गई मर्द काफिर, फूट पड़ गई घर घर में। तो का सब लोगों को अपने यूं कहेंगे कि नऊज़ु बिल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है और जादू करके सबके घरों में लड़ाइयां करवाते हैं, फूट पड़वा देते हैं, दो दो पार्टियां करवा देते हैं। सबको ये मशवरा बहुत पसंद आया कि हर एक को अपने कहेंगे जादूगर है जादूगर है, और जादू करके घरों में लड़ाइयां करवाते हैं। ये राय सबको पसंद आई, उस पर फैसला हो गया। एक और मक्का का बहुत चालाक आदमी था, नबर इब्ने हारिस, व्यापारी आदमी था, दूर दूर बिजनेस करने जाता था, मालदार भी होशियार भी, बिजनेसमैन आदमी, व्यापारी आदमी। उसने एक मौके पर खड़े होकर के कहा, वल्ला खुदा की कसम खा के कहता हूं, काबा के रब की कसम खा के कहता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है, मैंने बहुत जादूगरों को देखा, हालांकि नजर काफिर था, ईमान नहीं लाया, लेकिन उसने सच्ची बात कही कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े जादूगरों को देखा है, मैं कसम खा के कहता हूं ये जादूगर नहीं है। और ये जो कुरान पढ़ते हैं उस कुरान के अंदर मिठास है, उस कुरान के अंदर रौनक है, उस कुरान में ताजगी है, ये वाकई कोई गैब से आई हुई बात है, ये जादू नहीं है, और काफिर लोग ही कह रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान पढ़ते थे, काबा के सामने खड़े हो गए, काबा थोड़ी सी रेती, बाकी सब झाड़ियां थी, हुजूर काबा के सामने अकेले अकेले रात को कुरान पढ़े। अब कुरान इतना अच्छा, आज कोई अच्छे कारी साहब आके कुरान पढ़े हमको कितना अच्छा लगे। अब अंदाजा लगाओ कि हुजूर की मुबारक जुबान से कुरान सुनना कितना अच्छा लगे। तो मक्का के जितने बड़े बड़े दुश्मन थे, अबू जहल, ये नदर बिन हारिस, वलीद बिन मुगैरा, सब दुश्मन कुरान सुनने आवे, उनको बहुत मजा आता था कुरान सुनने में, लेकिन ओपन नहीं होना चाहते, खुले नहीं आना चाहते, सब चुपचाप आके झाड़ी में छुप जावे, कोई इधर झाड़ी में छुपे, कोई उधर झाड़ी में छुपे, और छुप के सब हुजूर का कुरान सुने। एक दिन ऐसा हुआ, कुदरत की शान देखो, हुजूर ने अपना कुरान पूरा किया, तहज्जुद की नमाज पूरी हुई, अब सब झाड़ी में से निकल के जा रहे थे, सब एक साथ हो गए, अब सबका भांडा फूट गया, तो एक दूसरे को पूछ रहे, तू कहां गया था? तब रेवानी गया, कह दिया कि मैं तो कुरान सुनने गया था। दूसरे ने कहा, तू कहां गया था? कहा, कुरान सुनने गया था। तो एक बोला कि तुम्हारी दुश्मनी भी अजीब है, दिन में दुश्मनी करते हो, रात को छुप छुप के कुरान सुनने आते हो। तो अबू जहल को कहा, अबू जहल ईमान लिया, तू मानता है कि ये सच्चा कुरान है, फिर क्यों ईमान नहीं लाता? इसलिए तो सुनने आता है, रात रात जागता है और झाड़ी में छुप छुप के कुरान सुनता है, ईमान क्यों नहीं लाता? अबू जहल ने जवाब ये दिया कि अगर मैं इनके ऊपर ईमान ले आऊं तो इनका खानदान ऊंचा हो जाएगा और मेरा खानदान नीचा हो जाएगा, इसीलिए खानदानी लड़ाई की वजह से मैं ईमान लाना नहीं चाहता। मानते थे वो लोग कुरान को, तो सब बात अल्लाह ने फरमा दी कि ये कुरान सच्ची किताब है। उस जमाने के दुश्मन काफिर भी इसको मानते थे, और आज तक दुनिया में तमाम दुश्मनों ने कोशिश कर ली, ये मत समझना कोशिश नहीं हुई, 1500 बरस में बहुत कोशिश हुई, बहुत पैसे भी खर्च हुए, पूरी पूरी टीम लगाई गई कुरान को बदलने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक जबर और जेर को बदल नहीं सके। ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, हम हिफाजत करेंगे। और जो भी कुरान सुनता है, चाहे काफिर हो मुशरिक हो, उसके दिल के ऊपर असर होता है, अजीब असर रखा है अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर। जब मेरा पहली मर्तबा पनामा का सफर हुआ, तो ईद के दिन, वहां ईदगाह नहीं है, सन 2000 में यानी जब सदी बदली थी तब, तो एक यूनिवर्सिटी का मैदान किराए पर रखते हैं और वहां ईद की नमाज पढ़ते हैं। 2500 अपने इंडियन मुसलमान है वहां, बाकी दूसरी कंट्री के मुसलमान हैं। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि जहां अपने लोग दूसरे मुल्कों में बसते हैं, तो वहां हर देश में अपनी इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट होती है। तो उस वक्त पर वहां एक सिख इंडियन एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर थे, वो ईद के दिन जहां ईद की नमाज हो रही थी, तो वहां इंडियन मुसलमानों को ईद की मुबारक बादी देने के लिए खुद आए इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसडर। मैं बिल्कुल बयान के वक्त के ऊपर ईदगाह में वहां जाना, जहां ईद की नमाज थी वहां पहुंचा और जाके मैंने सुविधा बयान शुरू कर दिया। और ईद का दिन अल्लाह की रहमत बरसे, मगफिरत का ऐलान होवे, फरिश्ते अहले ईमान से मुलाकातें करे, कैसा नूरानी माहौल। और बयान भी उस दिन हर मर्तबा हमने तजर्बा किया, अजीब बयान होता है। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था और तर्जुमा कर रहा था और लोगों को समझा रहा था, मुझे नहीं मालूम कि इंडियन एम्बेसडर भी आए हुए हैं। वो सिख एम्बेसडर अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठे हुए मजमे में, और देखा मैंने अपनी आंख से। थोड़ी देर के बाद जब मेरा बयान पूरा हुआ और नमाज की तैयारी हुई, तो वहां एक बड़े मुफ्ती साहब है, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब ने आके मुझे बताया कि मुफ्ती साहब देखो वो इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसडर आए हैं यहाँ की एम्बेसी से। मैंने जो देखा, आप यकीन मानो मैं कुरान के सामने बैठा हूं, वो धाड़े मार मार के रो रहे थे, आंख में से आंसू निकल रहे हैं, दाढ़ी पर आंसू है, बहुत रो रहे थे। और जब नमाज पूरी हुई, मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज से सलाम फिराया, तो मिस्टर तारा सिंह आके खड़े हो गए मेरे बाजू में और मेरे हाथ से माइक ले लिया, और रोते रोते वो पूरे मुसलमानों के मजमो को कहने लगे कि आज मैंने आप लोगों का कुरान सुना, कुरान क्या चीज है। और मेरे दिल पे इतना असर हुआ कि मैंने यकीन कर लिया कि ये तुम्हारे अल्लाह की सच्ची किताब है। उसने मजमे के सामने खड़े होकर के कहा, ये कुरान की तासीर है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर अता फरमाए और इस नेमत से, कुरान से अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमाए। और कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर अमल करने वाला अल्लाह हमें बना दे। ये किसी भाई ने लिखा है कि 7 साल हो गए शादी के, अब तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला उनके यहाँ नेक और साले औलाद अता फरमाए। पेशाब करने के बाद ईंट या ढेले का इस्तेमाल किस तरह करें? जब पेशाब से फारिग हो जाओ तो एक दो मरतबा खांसी करने की, नहीं आवे तो भी खांसी करने की, ताकि पेशाब के रास्ते के अंदर जो एकाध दो टीपे रह जाते हैं, कतरे रह जाते हैं, वो निकल जावे। और फिर पेशाब की जगह के ऊपर जहां से पेशाब निकलता है वहां ईंट या मिट्टी का टुकड़ा रख देने का, तो अंदर जो कुछ पेशाब होगा उसको चूस लेगा। फिर वो ढेला डिब्बे में डाल देने का, और वो एक ढेला अगर बड़ा हो, इस मर्तबा एक साइड से इस्तेमाल किया, दूसरी मर्तबा दूसरी साइड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब उसकी जगह के ऊपर टॉयलेट पेपर है, कि टॉयलेट पेपर जो होता है, टिश्यू पेपर होता है, उसके जरिए से भी ये काम हो सकता है। मुझे एक जगह से वलीमे की दावत आई है और मुझे पता चला कि उसका वलीमा दूसरे लोगों के पैसे से हो रहा है। अब पता नहीं वो पैसा हराम का है या हलाल का है, तो ये खाना जायज है? एक आदमी बोलता है कि एक आदमी के 50 रुपए खाने के हिसाब से पैसे दे देवे तो जायज हो जावे, ऐसी शरीयत तो हमको मालूम नहीं है। अब वलीमे की दावत आई है तो दावत कबूल करना सुन्नत है, जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको यकीन है कि उसके पैसे गड़बड़ है कि तो मत जाओ। बाकी कोई दूसरा आदमी किसी का वलीमा करावे ये कोई गुनाह का काम नहीं है। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके यहाँ शादी हो रही है, मैं अपनी तरफ से वलीमा करा दूं, ये कोई गुनाह का काम नहीं है। हाँ, हराम के पैसे से वलीमा करावे तो मत जाओ, और 50 रुपये जमा कराने से फीस अदा नहीं होती है, वो तो दूल्हे को हदिया देना सुन्नत है, वो अलग चीज है। कि भाई जिसकी शादी हुई, दुल्हा दुल्हन, उसको मुबारकबादी दो और उसको कुछ हदिया दो, जो दे सको, हदिया देना सुन्नत है, लेकिन वो खाने की फीस की नियत से नहीं। ये किसी औरत ने सवाल लिखा है कि मैंने सूरह बकरा पढ़ी लेकिन एक साथ में पूरी नहीं पढ़ सकी क्योंकि मेरे छोटे बच्चे भी हैं। तो अगर सूरह बकरा तुम एक साथ पूरी नहीं पढ़ सको यानी अलिफ लाम मीम वाली सूरत, तो थोड़ी थोड़ी देर करके पढ़ो, बीच में थक जाओ पानी पियो थोड़ा आराम करो, इस्तिंजा वुजू का तकाजा हुआ फिर पढ़ो, तो भी इंशाल्लाह फजीलत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उम्मत के बच्चों को हाफिज जाकिर शाकिर मुबल्लिग दीन के दाई बनावे। दुरूद शरीफ पढ़ने सुबहानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسالك رضاك والجنة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، ہر حرام کام سے ہماری حفاظت فرما لے، زندگی کا ہر کام تیری مرضی کے مطابق کرنے والا بنا دے، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، ہماری سوچ کو ہماری بات کو ہمارے کام کو تیری مرضی والا بنا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ہم سب کو بھی بیماریوں سے حفاظت میں رکھنا، اے اللہ جن کو جو بیماری ہے اپنے کرم سے دور فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اجڑو ہوئوں کو آباد فرما، پورے عالم کے اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو مساجد مکاتب مدارس خانقاہ مراکز اور تمام دین کی چیزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کی ہر طرف سے حفاظت فرما لے، اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت عطا فرما، مسلمانوں کو کامل مسلمان بنا دے، تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی نصرت فرما دے، اے اللہ جو قید و بند میں ہیں ان سب کو باعزت چھٹکارا عطا فرما دے، جن کے مقدمات مستقبل قریب میں شروع ہو رہے ہیں اے اللہ ان سب کو ان کی ضمانت کی درخواستوں کو منظور فرما دے، باعزت بعافیت بری فرما دے، اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، مدینہ پاک کی موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرما، जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे करम से फजल से ईमान के साथ ए अल्लाह खुशी खुशी दुनिया से अपने वक्त पे जाना नसीब फरमा। हमारी कब्रों को शुरू से जन्नत का बागीचा बना दे। तेरे फजल से बिला हिसाब किताब बिला इस्तेहकाक जन्नतुल फिरदोस का अव्वलीन दाखला अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। तेरे अर्श का साया अता फरमा। हमारी औलादों को हाफिज आलिम दीन के दाई जाकिर शाकिर मुबल्लिग बना दे। हमारी तमाम औलादों को कामिल मुकम्मल मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयां मांगी बतलाई हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर से पना चाही हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जिनके ऊपर जिन्नात और जादू के असरात हैं ऐ अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह इस दुआ को अपने करम से फजल से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सैयदिना मुहम्मद वाला आलिही वा असहाबिही वाला मन तबियाहुम बेसानिन इला यौमिद्दीन।